निक ने खुद को काबू किया और अपनी बात पूरी करने लगा कि तभी वहां किसी के आने की आहट हुई। निक और प्रियल दोनों ही चौंक गए। निक ने दबी आवाज में कहा, लगता है कोई आ रहा है, तुम फिर से बेड के नीचे छुप जाओ, अगर कोई अंदर आया भी तो तुम्हें नहीं देख पाएगा। अगर इस समय किसी ने आपको यहां देख लिया तो उनको आप पर भी शक हो जाएगा, आपको भी छुपना पड़ेगा, प्रियल ने भी बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। बाहर से किसी के दरवाजा खोलने की आवाज हुई तो निक और प्रियल जल्दी से दोनों बेड के नीचे छुप गए। वहां उस वक्त सरजी के साथ सुनहरी आई थी। फुलवा बेड पर गहरी नींद में सोई हुई थी। सुनहरी ने अंदर आकर फुलवा की तरफ इशारा किया और कहा, ये देख, चिड़िया फिर से पिंजरे में आ गई। अब जन्नत को वापस यहां लाने का एक ही तरीका है। कल शाम तक सभी इलाकों में खबर पहुंच जानी चाहिए कि जन्नत बाजार में फुलवा की बोली लगने वाली है। मैंने सभी बड़े बड़े लोगों को बुलावा दिया है और एक अच्छे से जलसे का इंतजाम भी करवा लिया है। शाम को 6 बजे जलसे के बाद फुलवा की बोली लगेगी। जो भी उसे खरीदेगा रात तक फुलवा उसकी होगी। जब तक उसे इसको रखना होगा रख लेगा, उसके बाद मैं और कहीं भेज दूंगी। हाँ, और इसे बचाने के लिए तो वो जन्नत 7 आसमान भी पार करके आ जाएगी, लेकिन इस बार वो आए तो उसे सस्ते में मत निपटाना, सरजी पान चबाते हुए जवाब दिया। पहले तो मुझे उससे अपना बदला लेना है। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा था और वो मुझे धोखा देकर भाग गई। उसके बाद मैं अच्छे से जानती हूँ क्या करना है और क्या नहीं। चलो आ जाओ, फिर से दरवाजा बंद करके चलते हैं। सुनहरी सरजी के साथ वापस चली गई और साथ में उसने दरवाजे को ताला लगा दिया। निक और प्रियल बेड से बाहर निकल कर आए। निक ने कहा, तभी मैं नहीं चाहता था कि तुम जन्नत बाजार में वापस आओ, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। ये मेरा मिशन है और मैं इससे दूर कैसे भाग सकती हूँ। चलिए अब आप यहाँ से चले जाइए, अगर किसी ने गलती से देख लिया तो आप और फुलवा दोनों के लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। निक ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और जाओगी तो तुम, वो भी घर। दोनों फिर से बहस करने लगे। दोनों बिल्कुल धीमी आवाज में बात कर रहे थे ताकि फुलवा भी ना जागे और उनकी आवाज भी बाहर ना जाए। प्रियल ने कहा, मैं जब तक फुलवा को किसी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचा देती तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जिद मत करो, वरना पिछली बार की तरह जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा, फिर मत बोलना कि आपने मुझे मारा, प्रियल ने आंखें दिखाते हुए कहा। तो क्या आप मुझे मारोगे, हाथ उठाओगी मुझ पर? हाँ, नहीं, जब तुम मेरे पीछे झाड़ू, डंडा और पता नहीं क्या क्या लेकर मारने को भाग सकती हो तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें एक थप्पड़ तो लगा ही सकता हूँ, प्रियल ने कहा। डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में ही नहीं, बिल्कुल सब जगह पर क्राइम है। हाँ, मेरे ऊपर जो वायलेंस की जाती है वो लीगल है, और वैसे भी तुम तो मुझे अपना पिता मानती ही नहीं हो, प्रियल ने कहा। लेकिन लीगली हम अभी भी हस्बैंड और वाइफ हैं, तो मुझ पर हाथ उठाने का कभी सोचिएगा भी मत। निक प्रियल को खींचकर अपने बिल्कुल करीब ले आया। प्रियल ने दबी आवाज में कहा, ये क्या है आपका, जब देखो खींचकर अपने पास ले आते हो? ऐसे तो तुम पास आती नहीं हो, तो मैंने सोचा कि खींचकर ही पास ले आऊं। अब बताओ, जिद करोगी क्या, बोलते हुए निक ने उसे कसकर पकड़ लिया। प्रियल निक की पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन निक ने उसे अपनी बाहों में और भी टाइटली पकड़ लिया कि प्रियल उसकी पकड़ से अलग नहीं पा रही थी। प्रियल ने कसमसाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। निक ने कहा, तुम्हारा दिल हमेशा की तरह जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि ये आपकी एली का दिल है ना, इसीलिए। निक ने कहा, हाँ, जो कि अब मेरी प्रियो के पास है। अच्छा, बाकी जिद मत करो, चली जाओ यहां से, वरना पूरी रात ऐसे ही मेरी बाहों में रहना पड़ेगा। अगर आप पूरी रात मुझे ऐसे पकड़ के रखोगे तो भी नहीं जाऊंगी, निक ने पूछा। यहां पर रात को इतना साइलेंस क्यों रहता है, क्या सारी की सारी लड़कियां बाहर चली जाती हैं? हाँ, लगभग सारी, कुछ कस्टमर बाहर नहीं ले जा सकते तो उनके लिए जन्नत बाजार के सबसे ऊपर के फ्लोर में कमरे बने हुए हैं, वो लोग वहां पर होती हैं। अब कुछ और पूछना बाकी रह गया आपका? अगर सब हो गया है तो छोड़ दीजिए मुझे, निक ने प्रियल को छोड़कर बोला। चलो चलते हैं। कहाँ, भूल गए फुलवा को भी बचाना है, प्रियल ने चौंकते हुए कहा। मुझे याद है कि फुलवा को बचाना है, लेकिन मुझे जन्नत बाजार के उन सभी हिस्सों में जाना है जिनको सुनहरी और रूपाली ने मुझसे अब तक छुपा कर रखा है। लेकिन फुलवा यहाँ अकेली, निक ने उसकी बात बीच में काट कर कहा। हम वापस आ जाएंगे, काफी रात हो गई है, वैसे भी अब यहाँ कोई नहीं आएगा। निक जिस खिड़की से अंदर आया था उसी खिड़की से पहले खुद बाहर निकला और बाद में प्रियल को बाहर निकालकर उसे वापस बंद कर दिया। प्रियल निक को उस मंदिर वाले हिस्से में ले गई जहां पर वो रहती थी। उस हिस्से में कोई भी नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वहां से प्रियल निक को एक बाथरूम में ले गई जिसके अंदर सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। वहां से वे दोनों एक तहखाने में पहुंचे। अच्छा, इन्होंने अंडरग्राउंड भी बनवा रखा है, लेकिन यहां इतनी बदबू क्यों आ रही है और अंधेरा भी कितना है, निक ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, लेकिन फिर उसकी आवाज हल्की गूंज रही थी। प्रियल ने बोलने के बजाय साइन लैंग्वेज का सहारा लेते हुए कहा, क्योंकि इस हिस्से की ना तो साफ सफाई होती है और ना ही कोई यहां पर आना पसंद करता है। बस मोती मौसी यहां पर आकर इन बच्चों को खाना दे जाती हैं और कभी कभार इनकी माओं को मिलने की इजाजत दी जाती है, निक ने चौंकते हुए कहा। व्हाट, बच्चे? लेकिन बच्चे यहां पर कहां से आए, क्या इन्हें भी किडनैप करके लाया गया है? लेकिन रूपाली और सुनहरी ने मुझे पहले नहीं मिलवाया इन बच्चों से, प्रियल ने कहा। एक साथ इतने सवाल, प्रियल ने गहरी सांस ली और कहा, निक, ये बच्चे यहां पर रहने वाली औरतों के ही हैं जिनके बाप के नाम शायद वो खुद भी नहीं जानती होंगी, निक ने पूछा।
तो इन बच्चों को इनकी माँ से अलग क्यों कर रखा है? ताकि यहाँ की लड़कियाँ अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ से भाग ना सके। कुछ लड़कियाँ बगावत पर भी उतर आती है, तो ये बच्चे उन चुड़ैलों के बहुत काम आते हैं। वो तो इतनी बुरी है कि इन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना देती है। यहाँ अंधेरा है, वरना मैं दिखाती कि इन बच्चों की हालत कितनी ज्यादा बुरी है। इन्हें यहाँ से निकाल कर एक अच्छा भविष्य देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पता है इन बच्चों की उम्र क्या होगी? कोई बच्चा तो 3 या 4 महीने का ही होगा, तो कोई 6 या 7 साल का। इनमें जो लड़कियां हैं उनको भविष्य में इसी काम में लगा दिया जाएगा। और तो और, इन बच्चों की माओं में किसी किसी की उम्र तो अभी 18 साल भी नहीं हुई होगी और उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। बस ये एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं और आंखों में एक उम्मीद लिए हुए कि कभी तो इन्हें इस दर्द से छुटकारा मिलेगा। निक ने अपने फोन की टॉर्च चलाई और देखा, वहां पर लगभग 40 से 50 बच्चे पास पास सो रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी मानो उन्हें काफी वक्त से खाना ना मिला हो। उन्हें देखकर निक की आंखों में आंसू आ गए। निक ने कहा, देखना तुम, हम बच्चों को जरूर बाहर निकाल लेंगे और मैं इन्हें एक बहुत अच्छा भविष्य देने की कोशिश करूंगा। निक की आवाज बोलते बोलते बैठ गई और उन बच्चों को देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रियल ने निक को चुप कराने के लिए गले लगा लिया और सहलाने लगी। अगर आप इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो आप बहुत बेस्ट कर सकते हो। ये आप ही जानते हो कि आप अपने काम में कितने बेस्ट हो, निक ने सुबकते हुए कहा। लेकिन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा क्यों है प्रियल?
प्रियल ने कहा, आप संभालिए खुद को, हमें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। सुबह होने वाली है और सभी लड़कियाँ अपने काम से आने वाली हैं, उनमें से इनकी माएँ भी होंगी। ये तो कुछ नहीं है निक, यहाँ पर एक और जगह ऐसी है जिसे आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें फुलवा को यहाँ से निकालने की प्लानिंग करनी होगी। प्रियल, तुम यहाँ से घर जाओ और जैन को बोलो कि फुलवा की लीगल आईडी बनाने का काम शुरू कर दे। घर जाकर डैड से भी बात करना, तुम बात करोगी तो ज़्यादा सही रहेगा, और हो सके तो प्रियांक से भी बात कर लेना। उसे नहीं पता अभी तक कि तुम मिल गई हो। आई नो ये बताने का सही टाइम नहीं है, लेकिन वो भी वहाँ पर अकेला है और परेशान भी होगा। तुम एक बार बात कर लोगी तो शायद कुछ ठीक हो जाएगा। और प्लीज़ अब ये मत कहना कि मैं घर नहीं जाऊँगी। मेरे लिए नहीं तो फुलवा और इन बच्चों के लिए घर चली जाओ और जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कर लो। मैंने डैड को बोल दिया है कि वो वहाँ किसी ऑर्फनेज को अडॉप्ट कर ले जिसमें कम बच्चे हों। हम वहाँ इन बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। बोलो, जाओगी ना घर?
हाँ निक, प्रियल अपनी बात पूरी होने से पहले ही रुक गई।
हाँ क्या हुआ? प्रियल ने कहा, कुछ नहीं, आप बस अपना काम रखिएगा। एंड आई वॉट? निक ने पूछा। प्रियल ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू।
हाँ, बड़े अच्छे से बात को घुमाया है। ओके जाओ, एंड आई लव यू टू।
इससे पहले कि कोई वहाँ पर आता, निक और प्रियल वहाँ वापस बाहर निकल आए। प्रियल वहाँ के काफ़ी गुप्त रास्तों को जानती थी, इसीलिए उनमें से किसी एक रास्ते से वो वापस चली गई। उधर रॉन रूपाली और सुनहरी से उगलवाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो फुलवा को किसे बेचने वाली है। दूसरी तरफ प्रियल भी घर पहुंच गई थी। वो प्रियांक से बात तो नहीं कर पाती, लेकिन जैन के साथ मिलकर फुलवा की लीगल आईडीज बनाने के काम में लग गई। शाम को जन्नत बाजार में बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। उन्होंने फुलवा को सजा धजा कर आगे खड़ा कर रखा था। वहां आए लोग अपनी गंदी नजरों से उसी को देखे जा रहे थे। जलसे के बाद फुलवा की बोली लगने का काम हो रहा था। निक के साथ रॉन, अंकित, जैन, एमा भी वहीं पर मौजूद थे। निक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, तो वहीं प्रियल सबकी नज़र से छुपकर वेश बदलकर वापस जन्नत बाजार में प्रवेश कर चुकी थी। निक ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज फुलवा के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं गुड़िया का सामना कैसे करूंगा? मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं फुलवा को बचाऊंगा। इन लोगों के सामने से मैं फुलवा को यहाँ से लेकर भी नहीं जा सकता। अंकित ने कहा, सॉरी निक, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन अब हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि आज इस बोली में जो सबसे ज्यादा रुपए लगाएगा वो फुलवा को खरीद कर उसे अपने साथ ले जाएगा। रॉन बोला, अरे साथ कहाँ ले जाएगा, इन्होंने तो जन्नत बाजार में ही सब काम करने की तैयारी कर रखी है।
कैसा काम? यू मीन दैट? एमा ने चौंकते हुए पूछा। निक ने कहा, यस एमा, मुझे भी इस बारे में प्रियल से पता चला। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं फुलवा को कैसे बाहर ले जाऊँ। वो सभी लोग परेशान होकर हल निकालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक 55 साल के आदमी ने वहां सबसे ज्यादा बोली लगाई। सुनहरी आगे खड़ी थी और उसने वहां खड़े लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया ताकि कोई उससे भी ज्यादा बोली लगा सके। फुलवा वहीं पास में डरी सहमी खड़ी रो रही थी। जन्नत बाजार में फुलवा की बोली लगभग तय हो ही चुकी थी कि तभी अचानक से एक आवाज आई। इस आवाज वाले व्यक्ति ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। वो रकम वाकई इतनी ज्यादा थी कि वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए।